Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। हम समझते हैं कि जिंदगी तो सिर्फ आज में है, पल भर खुशी मना लेते हैं, आगे की आगे देखी जाएगी। पर रियलिटी तो ये है दोस्तों कि ये जो पल में हमें खुशी मिल रही है उसे सिर्फ बटोरना नहीं है, हमें जमा का खाता भी देखना है। अर्थात हमारे जो अभी कर्म चल रहे हैं, क्या हमारा वो कर्म आगे के फ्यूचर को सिक्योर करने लायक है या नहीं है। आज इन कुछ सवालों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं बीके एमपी अग्निहोत्री जी, जो बताएंगे कि किस तरह से जिंदगी में हार्ड वर्क अर्थात सही कर्म करना कितना जरूरी है। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो।
ओम शांति, थैंक यू
ब्रदर। हमारी पूरी सीरीज चलती आ रही है भाग्य के ऊपर, भाग्य की लकीरें। हम समझते हैं कि हमारे भाग्य की लकीरें, जब हम किसी से ज़िंदगी में शादी करते हैं या हम इस जन्म में आते भी हैं, तो जब हम दूसरे व्यक्ति के साथ में समय बिताते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो या हमारे वाइफ या हस्बैंड या बच्चे हो, ये सभी रिश्ते हम समझते हैं कि हमारी लकीरें उनसे जुड़ गई हैं। ये बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि क्या हमारा खुद के कर्म का ही हमारे ऊपर असर पड़ता है या हमारे रिश्तेदारों के कर्मों का भी हम पर असर पड़ता है?
दोनों तरफ से सही है, दोनों का असर पड़ता है। एक तो जो रिलेशंस हमारे बने हैं, वो रिलेशंस हमारा पुराने कर्मों का कुछ लेन देन है जो हमारे पास आए हैं। जो भी हमारा संबंध बना है, चाहे हमारे माता पिता से, चाहे हमारे बच्चों से लिंक हमारा हुआ, चाहे वाइफ से हुआ है, चाहे हस्बैंड से हुआ है, तो वो सारा लेन देन का संबंध है। आज पुराने जन्म में जैसे हमने बिहेव किया हुआ है, वो हमारे पास अपने अकाउंट्स लेने आए हैं। आपने देखो, अगर कुछ माँ बाप बिल्कुल बहुत अमीर होते हैं, बच्चे उनके घर पैदा होते हैं, तो नेचुरली उन्होंने कितना उनसे माँ बाप से लेना ही होता, वो सब कुछ माँ बाप बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही माँ बाप उनको खाली छोड़ देते हैं या कर्ज भी छोड़ जाते हैं।
करेक्ट,
ऐसे भी होते हैं। तो ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, अकाउंट सेटलमेंट है। हम इसको इस बात को समझते रही हैं कि जो आत्मा हमारे घर में आई है, वो आत्मा पिछले पूर्व किसी ना किसी जन्म में हमारे किसी ना किसी संबंध में थी। आप कई बार देखते हो किसी ऐसे आदमी से आपका मिलन होता है जो बहुत शॉर्ट टर्म का होता है, आप चलते चलते रास्ते में किसी का भला कर देते हो। गाड़ी में एक बार मिला, जिंदगी में एक बार भला किया, दोबारा उससे मेरा मुलाकात हुई नहीं। विदेश में गए, वहां जाके किसी के साथ आपका संबंध हुआ, लेकिन उसके बाद मिलन नहीं हुआ। तो वो थोड़ी देर का, जितना जिसके साथ कोई साप्ताह होता है वो उतना ही उसके साथ उसकी डीलिंग होती है।
करेक्ट,
उतना ही लेन देन होता है, उससे ज्यादा है ना ज्यादा कम। इतना जरूर होता है कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पुराने जन्म में अगर किसी ने 10 रुपए उधार लिए, सपोज करो 100 ईयर्स बैक, तो पहले देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हुआ करता था, फिर धीरे कम हुआ, अभी थोड़ा काफी कम हो गया, पहले 3 साल में पैसा डबल हो जाता था।
करेक्ट।
तो उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि वो 100 साल के बाद जब वो आत्मा उस घर में आई तो उसका कर्ज करीब 3.25 करोड़ हो गया विद इंटरेस्ट।
जी,
तो नेचुरली अब हमें रीपे करना पड़ता है विद इंटरेस्ट। 10 रुपए लिए हुए विद इंटरेस्ट 3 करोड़ के, 2.98 करोड़ कुछ बना। अब देखिए, तो आज हम सोचते हैं कि कोई हमें एकदम धोखा देके चला जाता है, कोई पार्टनर धोखा दे गया बिजनेस में, कोई वैसे आपके साथ कोई हेराफेरी कर गया, किसी ढंग से आपके साथ चीटिंग कर गया, तो वो किसी ना किसी ढंग से लेन देन होता है। किसी जन्म में लिया हुआ वो इस जन्म में लेने आ जाता है, या कोई अगर आपसे इस जन्म में चीटिंग करके ले गया तो अगले जन्म में आपको देगा। तो ये तो हिसाब किताब है, इट्स अ डेफिनेट अकाउंट सेटलमेंट। ये हम समझते नहीं है, हम करते जाते हैं इस बात को बिना सोचे कि हमें देना भी पड़ेगा। जो मैंने वो एनर्जी दी है वो एनर्जी वापस भी आएगी मेरे पास। जो आज कर्म जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही किसी कर्म का फल है।
करेक्ट।
मैंने ही कोई कर्म कैसा किया हुआ जो मेरे को उसका रिजल्ट मिलता है, कोई एक्शन किया हुआ उसका रिएक्शन आज मेरे को मिल रहा है। तो इसलिए ये तो संबंधों का तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमें एक्सेप्ट करके चलना बहुत जरूरी है, और ये सोच कर कि ये आत्मा मेरे पास आई है, इस आत्मा का मेरे साथ कुछ ना कुछ संबंध है। इतने सालों के बाद शादी हुई है, शादियां टूट भी जाती हैं, और आजकल देखा भी कितना गया है कोर्ट में कितना कितना क्लेम कर देती हैं। शादी में 10 लाख खर्चा किया नहीं तो 1 करोड़ रुपए का क्लेम डाल देती हैं, ऐसे बहुत हो रहा है। तो मतलब वो सारा लेन देन का हिसाब था भी है, और देकर जान छुड़ानी पड़ती है, देना पड़ता है। हमने जरूर किसी ना किसी जन्म में लिया हुआ, वो आज हम ब्याज दे रहे हैं।
ब्रदर, भाग्य की हम बात कर रहे हैं
जी।
भाग्य
जी,
ऐसे कहा जाता है भाग्य विधाता है
जी,
जो भाग्य लिखता है।
लिखता है,
इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि भाग्य विधाता तो एक ही है।
बिल्कुल।
और उन्हें इसका नाम भी दिया गया है, उन्हें इसका औदा भी दिया गया है।
बिल्कुल।
तो भाग्य विधाता क्या हमारे भाग्य को लिख रहा है, या हम ही अपने खुद के भाग्य विधाता है? ये एक ऐसा थॉट है जो लोग काफी मानने लगे हैं कि हम ही खुद के क्रिएटर है और हम ही खुद के डिस्ट्रॉयर भी है
जी।
इस बात में कितनी सच्चाई है?
देखो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो भाग्य विधाता है, वो वरदाता है, वो देने वाला है, वो भाग्य देता है, भाग्य आपको देता है और आपको भाग्यवान बनाता है। ये हमारे ऊपर है, हम भाग्य कितना भाग्यवान बनते हैं। वो हमें कहता है कि तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली हो, पद्मा पद्म भाग्यशाली हो, लेकिन अगर हम कर्म ही ऐसे करते हैं, अपने भाग्य को लकीर मार रहे हैं, भाग्य को काट रहे हैं, तो भाग्य बनाना वो भाग्य बिदाता है, भाग्य देता है। जब हम उसको याद ही नहीं करते, उसको कनेक्ट ही नहीं करते, तो भाग्य कैसे बनेगा?
अच्छा,
जब तक हम उससे संबंध, भाग्य विधाता से संबंध तो बनाना पड़ेगा ना।
हाँ।
उससे रिलेशन तो बनाना पड़ेगा ना।
बिल्कुल।
कि आप भाग्य विधाता हो, मैं आप भाग्यवान आत्मा हूँ, तो ये सेल्फ एस्टीम में भी तो आना पड़ेगा ना। अगर मैं भाग्यवान आत्मा हूँ तो मेरा दुर्भाग्य हो कैसे सकता है?
ओ वाओ।
तो वो भाग्य विधाता, वो आपको भाग्य देने वाला, लेकिन कनेक्शन होगा तो होगा। अगर कनेक्शन नहीं है, उससे कनेक्शन ही नहीं है, हम दूसरी तरफ चले हुए हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, उससे कोई संबंध ही नहीं रखा हुआ। तो संबंध से ही कुछ मिलेगा ना। पिता बच्चों को देता है, ऑटोमेटिक देता है। रोशनी भी देखो, सूर्य लाइट दे रहा है, मांगनी नहीं पड़ती, लेकिन हमें यहाँ से बाहर तो जाना पड़ेगा ना, उसकी रोशनी लेने के लिए, उसकी गर्मी लेने के लिए, उससे विटामिन लेने के लिए। वो तो जीवन में वो एक अंधकार है, अगर हम भाग्य विधाता के साथ कनेक्टेड नहीं है तो हम अंधेरे में हैं, तो अंधेरे में लाइट कहां से आएगी? तो जीवन में वो प्रकाश करना भी बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज, उस ज्ञान को समझना जरूरी है कि वो भाग्य विधाता है, वो भाग्य देने वाला है, वो भाग्यदाता है, तो मैंने रिसीव तो करना पड़ेगा ना, उसे लेना तो पड़ेगा ना।
बिल्कुल।
अगर हम मतलब सोचेंगे कि ऑटोमेटिक हमारे मुंह में डाल देगा, वो तो नहीं होगा।
बिल्कुल।
हम मुंह खोल के ऊपर को बैठ जाएं, ऊपर से गुलाब जामुन गिरे मुंह में, ऐसा तो नहीं होगा ना।
बिल्कुल।
कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, पहले तो उसको अगर पड़ा भी है तो उठा के हाथ से मुंह में डालना तो पड़ेगा ना।
करेक्ट।
कर्म तो करना पड़ेगा।
बिल्कुल।
तो उसके लिए तो बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी।
ओके ब्रदर, थोड़ा ही कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में
जी,
अगर इस चीज का सलूशन मिल पाए
जी।
आजकल ज्योतिषी से हाथ दिखाना या मस्तिष्क दिखाना बहुत ज्यादा ट्रेंड में है
जी।
हम समझते हैं कि वो हमें अपना भविष्य बता देंगे
जी।
और वो भविष्य जानकर हम पहले से ही चौकन्ना हो जाएंगे कि हमें ये गलती नहीं करनी है
जी।
या ये स्टेप्स लेने हैं ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं
जी।
वो हमें एक भविष्य दिखाते हैं उनके नजरिए से
जी।
और उस नजरिए को हम सच मान लेते हैं
जी।
और फिर उस नजरिए की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ये करना किस हद तक सही है, क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति को आपने एक विजन क्रिएट करने का मौका दिया, अपनी जिंदगी का भविष्य तय करने का मौका दिया, और फिर वो जो बोलता है उसे मान भी लिया, तो किसी और व्यक्ति को इस ऐसा राइट देना क्या सही है?
देखो वो कमजोर आदमी ऐसा ही करते हैं। अब एक जो विवेक्ष वक्ता है उसको ठीक है, उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, उसके मुताबिक जो प्लैनेट शो कर रहे हैं वो उसको बताएगा कि आपको ये करना ये नहीं करना चाहिए। हमेशा वो भी बुरे कर्मों से रोकते हैं कि आपको इस दिन ड्रिंक नहीं करनी, इस दिन नॉन वेज नहीं खाना। वो कुछ तो आपको राहत देते हैं ना कि इतने दिन के लिए तो कम से कम पाप कम करो।
अच्छा,
क्या हमें इतनी समझ खुद को क्यों नहीं है कि वो हमें बंद करा रहे हैं 2 दिन या 3 दिन के लिए, हमें परमानेंट क्यों नहीं उस चीज को बंद कर सकते जो हमारे लिए दुखदाई है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो हमारे भाग्य को रोक रही है, तो उसको हम खुद क्यों नहीं बंद कर देते। वो अपना ठीक कर्म करते हैं, वो अपना काम, उनका काम है भविष्य बताना। तो वो जो जितनी जिसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको हॉरोस्कोप को इंटरप्रेट करके बता देंगे, वो समय के अनुसार बताते हैं, लेकिन वो अल्पकाल के लिए है। जब तक इंसान अपने कर्मों को नहीं सुधारता, अब कितनी बार ज्योतिषी के पास जाओगे, कितनी बार बीमार हो गए और कितनी बार डॉक्टर के पास जाओगे।
करेक्ट।
अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते, अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते कि मुझे अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, मुझे अपने आप को भाग्यवान बनाना है, तो मुझे जो दुर्भाग्यपूर्ण बातें वो तो छोड़नी पड़ेगी ना। जो दुर्भाग्य देने वाली बातें हैं उनको तो छोड़ना पड़ेगा। तो एक तरफ ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बुरे कर्म भी करता रहूं और चाहूं मेरा भाग्य भी बन जाए। फिर ज्योतिषियों के पास ही जाना पड़ेगा, वो तो टेम्पररी रिलीफ मिलेगा आपको, नो डाउट। अब ज्योतिषी जो बताते हैं टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है कि आप ये करो, इतने दिन करो, कम से कम आपका नेगेटिव थॉट तो रुक जाएगा ना।
पर कई जो भविष्य देखने वाले लोग होते हैं
जी,
वो कहते हैं कि 1 साल बाद आप बहुत अमीर बनने वाले हैं
जी,
या 2 साल बाद आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा
जी,
या 2 साल बाद आप बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हैं। ये जो थॉट्स होते हैं
जी,
ये आपके लिए एक सीड क्रिएट कर देते हैं माइंड के अंदर।
नाच्छी।
उससे क्या होता है, हम कई बार थोड़े लेट बैक भी हो जाते हैं
जी,
अरे मेरे तो भाग्य में लिखा ही है, कुछ भी करूंगा मैं तो भी मुझे ये तो मिलने ही वाला है। तो इसके वजह से हम मेहनत करना कम कर देते हैं। कुछ लोग उल्टा करते हैं, अगर उन्हें पता चलता है कि मैं इतना अमीर बनने वाला हूं, तो वो 1 साल इतनी मेहनत करते हैं कि वो सच में अमीर बन जाते हैं। तो एक व्यक्ति ने मेरी जिंदगी के लिए एक विजन क्रिएट किया, मुझे एक सीड डाला दिमाग से, और वो सीड को मैंने जर्मिनेट कर दिया। ये सही तरीका है एक ज्योतिषी को एग्जीक्यूट करने का। लेकिन दूसरा तरीका है कि मैं लेट बैक एटीट्यूड में रहूं, हाँ ये तो मुझे मिलने ही वाला है, मैं कुछ भी करूंगा, मेरी डेस्टिनी में ये तो लिखा ही है, तो ये तो हो ही जाएगा। तो ये जो थॉट है, इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है। सो राइट तरीका कौन सा है
ये सोचना? देखो वो तो राइट थॉट आपको दिया कि आप 1 साल बाद बन जाओगे, तो आपकी डायरेक्शन सही पे चलोगे कि मुझे ये बनना है, मुझे इतना अमीर बनना है, तो वो तब से मेहनत करनी शुरू कर देगा कि मेरा समय अच्छा आ गया। तो विचार तो अच्छा है, उसने एक थॉट दे दिया, अब उस थॉट के ऊपर चलोगे कि मेरा सही समय अच्छा है, मुझे इस समय का सदुपयोग करना है,
और एक होप दे देते हैं। वो होप बहुत बड़ी चीज होती है ब्रदर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर होप हमें मिल जाए तो हम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
बिल्कुल, वो एक डायरेक्शन है,
होप
भी है, एक डायरेक्शन भी है। और वो समय, देखो समय हर इंसान का परिवर्तन होता रहता है।
करेक्ट।
जैसे प्लैनेट सारे घूमते हैं, अब जैसे अब सर्दी गर्मी ले लो, अब सूर्य थोड़ा इस स्थान से साइड पे चला जाता है जैसे अर्थ घूमती है, तो यहाँ पे सर्दी हो जाती है। अब एक समय आ जाता है बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, सूर्य जब दूसरी डायरेक्शन में आता है।
करेक्ट।
तो इसी तरह से समय तो परिवर्तन होता रहता है। उस समय अब जैसे गर्मियों में सूर्योदय बहुत अर्ली होता है, सर्दियों में बहुत लेट होता है, तो ऐसे जब ये परिवर्तन होता रहता है, इस तरह से हमारी लाइफ में भी समय परिवर्तन होता रहता है। वो प्लैनेट्स की डायरेक्शन कभी आपके पास आ गई, कभी थोड़ी दूर चली गई, कि ऐसे सन भी सूर्य का भी इसी तरह से है, तो उनका इम्पैक्ट भी ऐसे होता चेंज होता रहता है। तो अभी बैड समय चल रहा है, उसकी बैड एनर्जी आ रही है, फिर पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। मींस उनको पता है कि ये प्लैनेट आपका 1 साल के बाद इस गुड डायरेक्शन में आने वाला है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आने वाला है, तो आपको लाभ होने वाला है
जी।
तो एक तो वो सही डायरेक्शन मिल गई कि 1 साल बाद मेरे स्टार अच्छे होने वाले हैं, एक उसको जैसे प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है।
अच्छा।
जैसे प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है, एक साइकोलॉजिकल उसके ऊपर इम्पैक्ट हो गया, एक साल बाद मेरा पीरियड बहुत अच्छा आने वाला। बहुत से लोग आते हैं ज्योतिषियों के पास, उस ज्योतिषी जी आपने तो कहा था मेरा साल बाद बहुत पीरियड आया, मेरा तो और भी सत्यानाश हो गया, मेरा तो और भी बुरा हो गया। मेरे पास भी कई लोग दोस्त कंसल्ट करते हैं, मैं बस ज्योतिष का काम नहीं करता, क्वालिफाइड हूँ नो डाउट, बट कई बार मेरे से पूछते हैं, एक ज्योतिषी ने मेरे को बताया था कि तेरा पीरियड बहुत अच्छा होने वाला और इससे गंदा पीरियड मेरा निकला ही नहीं। मेरे 3 ऑपरेशन ब्रेन के हो गए और मेरी वाइफ का ये ऑपरेशन हो गया, मेरे बच्चों का ये नुकसान हो गया, मेरा फाइनेंशियल इतना लॉस हो गया। वो आदमी इतना बोल रहा है, पर ज्योतिषी ने मेरे को बोला था भाई आपका साल बस समय ही बहुत अच्छा आने वाला। तो फर्क पड़ता है कि हमने जो आपका सेकंड पॉइंट था ना, कि कुछ लोग उसको ग्रंटर ले लेते हैं कि मेरा अच्छा आना ही है,
बिल्कुल
वो तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि वो ऐसा आदमी था जिसने सोचा ग्रंटर था मेरा पीरियड आने वाला ही बहुत अच्छा है, लापरवाह हो गया और उसको कितनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। तो ऐसा कभी ग्रंटर लेना भी नहीं चाहिए। जो जिसने साइकोलॉजिकल पॉजिटिव ले लिया ठीक है, उसको तो प्लेसिबो इफेक्ट हो जाता है, खाली कैप्सूल दे दिया, लो जी 100% रिजल्ट, आपको ठीक हो जाओगे कल तक, तो आदमी ठीक हो जाता है। दैट इज अ प्लेसिबो इफेक्ट।
करेक्ट। इसी से कॉन्ट्रडिक्टिंग दूसरा मेरा प्रश्न है
जी।
कुछ लोग सपोज अगर किसी ज्योतिषी ने बोल दिया कि अब आपको थोड़ा संभलने की जरूरत है, ये साल आपके लिए बहुत बुरा है, ऐसे लोगों के लिए बहुत नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है, वो डर जाते हैं, उनको रातों की नींद चली जाती है, दिन का चैन खो जाता है, उनके लिए अगले दिन वो जब सुबह उठेंगे तो एक खौफ के साथ उठते हैं कि अब क्या होगा, वो हर वक्त एंटिसिपेट कर रहे होते हैं किसी बुरे इंसिडेंट को।
yes.
ऐसे में उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है, क्योंकि उन्होंने एक बिलीफ के साथ में एक बंदे के पास गए, उस बंदे ने उन्होंने इस तरीके का कोई राय दे दिया तो वो व्यक्ति की पूरी पर्सपेक्टिव बदल जाती है, तो उस उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है?
मैं एक तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करके ऐसी डायरेक्शंस किसी से लेनी नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, अप्रोच नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से केस मैंने देखे भी हैं, सुने भी हैं, प्रैक्टिकली देखे हैं, किसी को बोला कि तुम्हारा आज से 10 साल बाद बहुत बैडली एक्सीडेंट होने वाला है। अब सोचो 10 साल वो कितना पेन में चलेगा, 10 साल सावधान में चलेगा, और पर्टिकुलरली जब वो पीरियड आएगा उस पीरियड पे वो डरता रहेगा और डरता, इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस, मेरा एक्सीडेंट होने वाला, मेरा एक्सीडेंट होने वाला, उसके अंदर से इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलती है, कोई एक्सीडेंट हो ही जाता है।
सही बात है,
चाहे नहीं भी होना था।
करेक्ट,
वो एग्जैक्टली एक्सीडेंट हो ही जाता है। एक आदमी को मैं ऐसे को जानता हूँ जिसको पंडित ने बोल दिया कि तेरा इतने साल बाद एक्सीडेंट होगा, इस पर्टिकुलर ईयर में होगा और इस मंथ में होगा।
अरे,
और वो उस मंथ तक इतना डरा रहा, उसको बाहर जाने के लिए बोलते ना ना ना, मेरा पंडित ने मना किया, नहीं बिल्कुल नहीं जाना, मजबूरी में एक बार जाना पड़ गया और सचमुच में एक्सीडेंट हो गया, फैटल एक्सीडेंट हो गया। तो ये तो कभी भी ऐसे आदमियों के पास देखो, जो अच्छा ज्योतिषी होता है वो थोड़ा सावधान करता है, वो बड़े गोल मोल ढंग से बताता है कि थोड़ा अवॉइड करना, थोड़े ऐसा है कि पीरियड ऐसा है जिसमें कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, चोट वोट लग सकती है, वो नहीं बताते बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है।
तो आप उस चीज को उनके माइंड में सीड डाल देते हो, इम्प्लांट कर देते हो। आपने
सीड डाल दिया और वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी ऐसा हो गया और वो डर इंसान के अंदर बैठ गया। और देखो कितने साल वो ट्रेवल करता रहा, 10 साल बाद बोला कि 80 में होगा, 90 में एक्सीडेंट होगा।
करेक्ट।
तो 10 साल उसके जीवन में डर ऐसा बैठ गया और ना चाहते हुए भी एक्सीडेंट हो गया।
सो ट्रू।
तो इसलिए कभी भी वैसे तो देखो कोशिश ये करनी चाहिए, विश्वास अपने कर्मों पे करो और उस परमपिता परमात्मा पे करो।
Correct.
तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई आपका भाग्य बदल नहीं सकता, चाहे वो ज्योतिषी हो चाहे वो कोई हो, आपका भाग्य किसी के पास बदलने की ताकत नहीं है। कोई अपनी किस्मत चेंज कर ले, पर अगर इतना किसी में ताकत हो तो वो अपनी ही किस्मत सबसे पहले क्यों नहीं चेंज कर लेता।
सही बात है।
तो इसलिए कभी भी इन चीजों में पड़ना नहीं चाहिए। बहुत से फेक हैं, कुछ बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं, फेक आपको ज्यादा मिलेंगे, जिनको नॉलेज कम है, सिर्फ पैसा कमाने का काम ओनली करते हैं।
करेक्ट।
तो ऐसे को अवॉइड करना चाहिए, तो इस कर्मों पे विश्वास करना चाहिए, अच्छे कर्म करो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, मेहनत का फल आपको मिलना ही मिलना है। कर्म का फल भी अच्छा मिलना ही मिलना है। तो इन चीजों पर डिपेंड करके कितनी देर करोगे, ये तो बैसाखियों पे चलने वाली बात है। एक बैसाखियों से चलने वाली बात है, इतने दिन ये काम कर लो तो आपका ये काम हो जाएगा, छोटा सा काम हो जाएगा। अरे सारी जिंदगी में बहुत सारे काम करने हैं हमने तो,
करेक्ट।
तो हर काम के लिए क्या ज्योतिषी की सलाह के लिए जाओगे? तो आप मतलब ऐसे तो नहीं कि बिना बुखार नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओगे? तो जब बीमारी आई है तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है,
करेक्ट।
लेकिन ऐसे कर्म हम ऐसे करें कि हमें किसी के पास जाना ना पड़े। ज्योतिष खुद सीख लो, ज्यादा बात है तो अपने आप भी सीखा जा सकता, कोई बड़ी बात।
ब्रदर मैंने देखा है, जब मैं बात करती हूँ भाग्य की, कई बार ऐसा होता है कि हम भाग्य इस चीज में बिलीव ही नहीं करते। कुछ लोगों का ये थॉट प्रोसेस होता है कि भाग्य वाग्य ये सब कुछ नहीं होता, जो भी है वो मैं जैसा करूंगा वैसा ही मुझे मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी जिंदगी जीते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलतियां वो कर लेते हैं अनोइंगली, और फिर वो डरते रहते हैं कि अरे मैंने ऐसा कर दिया है अब मेरे को रिजल्ट में कुछ गलती होने वाला है, और वो हर वक्त अब कुछ बुरा होने वाला है क्योंकि मैंने ये गलती की है ना। और फिर अगर कुछ थोड़ा भी गलत होता है तो बोलते हैं देखा मैंने ये गलती की ना, इस वजह से मुझे ये हो गया, ये मेरी ये गलती है, इस वजह से मैंने ये पश्चाताप कर रहा हूँ। तो वो उस डर में और उस गिल्ट में ही जीते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो भाग्य पर बिलीव करते हैं वही लोग दुखी हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो अपने कर्मों की वजह से भी दुखी हैं कि मैंने ये कर्म कर दिया इस वजह से ये जिंदगी में मेरे साथ हो रहा है। उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है?
तभी तो कहते हैं मनुष्य अपना शत्रु स्वयं ही है, अपना मित्र भी स्वयं ही है,
करेक्ट।
तो जब अपना मित्र है तो वो हमेशा अच्छे कर्म करके अपना भाग्य जमा करेगा, अपने भाग्य को बनाने की कोशिश करेगा। उसकी हर समय कोशिश यही होगी कि मुझे अपने भाग्य को बनाना है, मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनानी है, मैंने लोगों को रिस्पेक्ट देनी और रिस्पेक्ट लेनी है। और अपना शत्रु कैसे है? जब आदमी बुरे कर्म करता है उसको पता है कि मेरे को बुरा फल मिलने वाला है, और वो पाप के पाप किए जा रहा है,
करेक्ट।
आगे एक के आगे दूसरा तीसरा, वो मतलब अपने कर्मों पर ध्यान देता ही नहीं है, जो आया वो करता रहता है, जो किसी ने कहा कुसंग में एकदम चला जाता है, वो अच्छे संग में जाता ही नहीं, कोशिश नहीं करता। तो मींस वो अपना शत्रु खुद बना हुआ है, वो अपनी आत्मा का शत्रु खुद है, क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रख रहा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना ध्यान रखें, अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को बनाने की कोशिश करें। अब वही काम करें जो अपना भाग्य, जिससे हमारा भाग्य बनता हो, ना कि हमारा भाग्य दूसरी तरफ जा रहा हो। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हमारी सोच कैसी है, हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर सही दिशा पे जा रहे हैं हमारा भाग्य बनता जा रहा है, हमारा भाग्य जमा होता जा रहा है। अगर बुरी दिशा पे नेगेटिव पे जा रहे हैं तो नेचुरली पाप कर्म बने जा रहे हैं, पापों का बोझ चढ़ता जा रहा है, और उसका फल तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा ही।
बिल्कुल, आई थिंक दिस इज सो ब्यूटीफुल। हम जान चुके हैं आज की जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है, जिंदगी खुलकर जीने का नाम है। छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं या भाग्य से रिलेटेड जो बातें हमें लोग कह के जाते हैं या ज्योतिषी जो कहते हैं या हमारे आसपास के लोग जो कहते हैं, वो हमारी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करते। डेस्टिनी हमारे खुद के हार्डवर्क, परिश्रम, अथक प्रयास का नतीजा है, और जिंदगी इसी का नाम है। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर योर वैल्युएबल टाइम। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हम आज तक मानते तो आए लेकिन जान नहीं पाए। आज हमने जाना कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो भाग्य ये सब चीज़ों के बारे में सोचना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर देना है कि हम खुद अपना भाग्य लिखते हैं। अगर अपनी कलम अगर हम किसी और व्यक्ति को दे देंगे भाग्य को लिखने वाली, तो हम उसके अधीन हो जाएंगे और हम उसके परवश हो जाएंगे। अगर हमें अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है और भाग्यवान बनाना है, तो अपनी ज़िंदगी का भाग्य लिखने का कलम आप सिर्फ ईश्वर को दीजिए, और आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।